अध्याय 14। एक दिन साउल के पुत्र योनातान ने अपने शस्त्रवाहक सेवक से कहा, चलो हम फिलिस्तियों की चौकी के पास जाएं, जो घाटी के उस ओर है। लेकिन उसने इसके बारे में अपने पिता से कुछ नहीं कहा। साउल गिबा की सीमा पर उस अनार वृक्ष के नीचे पड़ा था जो मिग्रोन के पास है। उसके साथ की सेना में लगभग 600 सैनिक थे। शिलो में प्रभु के याजक एली का प्रपोत्र, पीनहास का पोत्र, अहीटू का पुत्र, ईकाबोद का भाई अहिया एफोत पहने हुए साथ था। लोगों को यह मालूम नहीं था कि योनातान चला गया है। फिलिस्तियों की चौकी पर आक्रमण करने के लिए योनातान को जिस घाटी को पार करना था उसके दोनों ओर ऊंची चट्टान थी। एक का नाम बोसेस था और दूसरी का सेन्ने। एक चट्टान तो उत्तर की ओर मिकमास के सामने थी और दूसरी दक्षिण की ओर गेबा के सामने। योनातान ने अपने शस्त्रवाहक से कहा, चलो हम उन बेखतना लोगों की चौकी के पास चलें। हो सकता है कि प्रभु हमारा साथ दे, क्योंकि विजय दिलाने से प्रभु को कुछ भी रोक नहीं सकता, चाहे हम संख्या में अधिक हों या कम। उसके शस्त्रवाहक ने उसे उत्तर दिया, आप जो चाहते हैं वही कीजिए, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। आप जो चाहेंगे मैं भी वही चाहूंगा। योनातान ने कहा, हम उधर की ओर आगे बढ़ें, जिससे चौकी वाले हमें देख लें। यदि वे हमसे कहेंगे कि जब तक हम तुम्हारे पास न आए तब तक ठहरे रहो, तो हम उस स्थान पर रुक जाएंगे और उसके पास ऊपर नहीं चढ़ेंगे। और यदि वे हमसे कहेंगे कि हमारे पास आ जाओ, तो हम उनके पास ऊपर चढ़ चलेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए एक संकेत होगा कि प्रभु ने उन्हें हमारे हाथ दिया है। जब दोनों फिलिस्ती चौकी की ओर आगे बढ़े तो फिलिस्तियों ने कहा कि लगता है अब इब्रानी उन कंदराओं से निकल आए हैं जिनमें वे छिपे हुए थे। उस चौकी के लोगों ने योनातान और उसके शस्त्रवाहक को पुकार कर कहा, हमारे पास ऊपर आओ, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। तब योनातान ने अपने शस्त्रवाहक से कहा, मेरे पीछे पीछे ऊपर चढ़ो, क्योंकि प्रभु ने उन्हें इज़राइल के हाथ दिया है। तब योनातान हाथ पैर के सहारे ऊपर चढ़ गया और उसके पीछे पीछे उसका शस्त्रवाहक भी। चौकी के सैनिक योनातान के सामने गिरते गए और उसका शस्त्रवाहक उसके पीछे पीछे उनका वध करता गया। उस पहली मुठभेड़ में योनातान और उसके शस्त्रवाहक के द्वारा आधे बीघे भूमि में लगभग 20 मनुष्य मारे गए। इसके बाद शिविर, क्षेत्र और सब लोगों में आतंक फैल गया। चौकी और छापामार दल के सैनिक भयभीत हो उठे, पृथ्वी कांप उठी। ये ईश्वर का फैलाया हुआ आतंक था। बेन्यामीन के गिबा में साउल के पहरेदारों ने आंखें उठाई तो देखा कि लोग चारों ओर बिखर रहे हैं। तब साउल ने अपने पास के आदमियों को आज्ञा दी, लोगों की गिनती करो और पता लगाओ कि हमारे यहां से कौन गया है। गिनती करने पर मालूम हुआ कि योनातान और उसका शस्त्रवाहक नहीं है। तब साउल ने अहिया को ईश्वर की मंजूषा पास लाने की आज्ञा दी, क्योंकि उस समय ईश्वर की मंजूषा इसराइलियों के पास थी। जिस समय साउल याजक से बातें कर रहा था, फिलिस्तियों के शिविर का हो हल्ला बढ़ता ही जा रहा था। तब साउल ने याजक से कहा, रहने दो। साउल और उसके पास के सब सैनिक एकत्रित हुए और रणक्षेत्र में आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि सैनिक आपस में ही तलवार चला रहे हैं और बड़ी खलबली मची हुई है। अब वे इब्रानी भी साउल और योनातान के पास रहने वाले इसराइलियों का साथ देने लगे, जो पहले फिलिस्तियों का साथ देते थे और उनके शिविर में आए थे। जब एफ्रेम के पहाड़ी प्रदेश में छिपे हुए इसराइलियों ने सुना कि फिलिस्ती भाग रहे हैं, तो उन्होंने भी युद्ध में सम्मिलित होकर फिलिस्तियों का पीछा किया। इस प्रकार प्रभु ने उस दिन इसराइलियों का उद्धार किया और बेत आवेन के आगे तक युद्ध फैलता रहा। योनातान द्वारा साउल की अवज्ञा। उस दिन इसराइली बड़े परेशान रहे, क्योंकि साउल ने लोगों को यह शपथ दिलाते हुए कहा कि जब तक संध्या न हो जाए और मैं अपने शत्रुओं से बदला न ले लूं, तब तक यदि कोई आदमी कुछ खाएगा तो वो अभिशप्त हो। इसलिए लोगों में किसी ने कुछ नहीं खाया। सब लोग वन में आए और उन्हें वहां भूमि पर एक खुले मैदान में मधु मिला। लोगों ने वन में आगे बढ़कर छत्तों से टपकता हुआ मधु देखा, किंतु शपथ के कारण किसी ने उसकी ओर हाथ नहीं बढ़ाया। किंतु साउल ने लोगों को जो शपथ दिलाई, उसके विषय में योनातान ने कुछ नहीं सुना था, इसलिए उसने अपने हाथ के डंडे के सिरे को मधु के छत्ते में डुबाकर अपने हाथ से मुंह में थोड़ा डाल लिया और उसकी आंखें चमक उठी। लोगों में किसी ने उससे कहा, तुम्हारे पिता ने लोगों को शपथ दिलाते हुए कहा कि जो आज खाएगा वो अभिशप्त हो, इसलिए लोग थके मांदे हैं। योनातान ने उत्तर दिया, मेरे पिता तो देश को परेशान करते हैं। मैंने थोड़ा सा मधु खाया और देखो मेरी आंखें कैसी चमक उठी हैं। यदि लोगों ने भी अपने शत्रुओं से लूटी हुई चीजों में कुछ खाया होता तो फिलिस्तियों पर हमारी जीत और शानदार होती। साउल द्वारा प्रभु की वेदी का निर्माण। उस दिन उन्होंने फिलिस्तियों को मिकमास से अय्यालोन तक भगा दिया। लोग बड़े थके मांदे थे, इसलिए वे लूट पर टूट पड़े और उन्होंने भेड़ों, बैलों और बछड़ों को पकड़कर भूमि पर उनका वध किया और लोग उन्हें रक्त सहित खाने लगे। जब साउल को यह सूचना मिली कि लोग रक्त सहित मांस खाकर प्रभु के विरुद्ध पाप कर रहे हैं, तो वो चिल्ला उठा, तुम लोगों ने ईश्वर के प्रति विश्वासघात किया, मेरे पास तुरंत एक बड़ा पत्थर लुढ़का लाओ। साउल ने आज्ञा दी, चारों ओर जाकर लोगों से कहो कि प्रत्येक व्यक्ति अपना बैल या भेड़ यहां लाए और मेरे सामने उसका वध कर उसे खाए। रक्त सहित मांस खाकर प्रभु के विरुद्ध पाप मत करो। इस पर लोगों में प्रत्येक ने उस रात अपने पास का बैल लाकर उसका वहां वध किया। साउल ने प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। ये प्रथम वेदी थी जो उसने प्रभु के लिए बनाई थी। लोगों द्वारा योनातान का बचाव। तब साउल ने कहा, हम इसी रात फिलिस्तियों का पीछा करें और सवेरे तक उन्हें लूट लें, हम उनमें एक को भी जीवित नहीं छोड़ें। लोगों ने कहा, आप जो उचित समझें वही करें। परंतु याजक ने कहा, पहले हम ईश्वर से पूछेंगे। इसलिए साउल ने ईश्वर से पूछा, क्या मैं फिलिस्तियों का पीछा करूं और क्या तू उन्हें इज़राइल के हाथ देगा? लेकिन उस दिन उसे कुछ उत्तर नहीं मिला। इस पर साउल ने आदेश दिया, जनता के नेताओं तुम सब यहां आओ, पता लगाओ कि आज यहां किसने पाप किया है। इज़राइल के उद्धारक प्रभु की शपथ, यदि मेरे पुत्र योनातान ने भी पाप किया होगा तो उसे मृत्युदंड मिलेगा। लोगों में किसी ने भी उसे उत्तर नहीं दिया। तब उसने सब इसराइलियों से कहा, तुम एक ओर खड़े हो और मैं और मेरा पुत्र योनातान दूसरी ओर। लोगों ने साउल को उत्तर दिया, आप जो उचित समझें वही करें। तब साउल ने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु इज़राइल के ईश्वर, तू सत्य प्रकट कर कि यदि अपराध मेरा या मेरे पुत्र योनातान का हो तो प्रभु इज़राइल के ईश्वर तू ये चिट्ठी द्वारा प्रकट कर, किंतु यदि अपराध तुम्हारी प्रजा इज़राइल का हो तो ये चिट्ठी द्वारा प्रकट कर। चिट्ठी योनातान और साउल के नाम निकली और दूसरे लोग निर्दोष निकले। तब साउल ने कहा, अब मेरे और मेरे पुत्र योनातान के नाम पर चिट्ठी डालो। तब चिट्ठी योनातान के नाम निकली। साउल ने योनातान से कहा, मुझे बताओ कि तुमने क्या किया है। योनातान ने स्वीकार किया, मैंने अपने हाथ के डंडे से थोड़ा सा मधु लेकर खा लिया था, मैं मरने को तैयार हूं। साउल ने कहा, योनातान, यदि तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी तो ईश्वर मुझे कठोर से कठोर दंड दिलाए। लेकिन लोगों ने साउल से कहा, क्या योनातान को, जिसने इज़राइल के लिए इतनी बड़ी विजय प्राप्त की है, मृत्यु दंड मिलना चाहिए? कभी नहीं, जीवंत ईश्वर की शपथ, उसके सिर के एक बाल को भी आंच नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर की सहायता से ही आज उसने ये विजय प्राप्त की है। इस प्रकार लोगों ने योनातान को मृत्यु दंड से बचा लिया। साउल ने फिलिस्तियों का पीछा करना बंद कर दिया और फिलिस्ती अपने देश लौट गए। साउल का शासन। साउल के इज़राइल पर राज्याधिकार प्राप्त कर लेने के बाद उसे आसपास के सब शत्रुओं, मोआब, अम्मोनियों, एदोम, सोबा के राजाओं और फिलिस्तियों से युद्ध करना पड़ा। वो जहां भी गया विजयी हुआ। उसने वीरता के साथ युद्ध किया, अमालेकियों को पराजित किया और इज़राइल को उसके लूटने वालों के हाथों से बचा लिया। साउल के पुत्र ये थे, योनातान, ईश्वी और मलकीशुआ। उसकी दो पुत्रियां भी थी, बड़ी पुत्री का नाम मेरब था और छोटी का नाम मीकल। अहिमास की पुत्री अहिनोअम साउल की पत्नी थी। नेर का पुत्र साउल का चाचा अबनेर उसका सेनापति था। साउल का पिता कीश और अबनेर का पिता नेर दोनों अबीएल के पुत्र थे। साउल के जीवन काल तक भीषण युद्ध चलता रहा। जब साउल किसी बलवान और वीर पुरुष को देखता तो वो उसे अपनी सेवा में ले लेता।